मेरे अत्यंत युवा मित्रों नमस्कार। आज 29 सितंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं महादेव रविदास, आप धर्मबंध झारखंड से हैं। आरती शुक्ला, आप बहराइच उत्तर प्रदेश से हैं। संजीव कुमार यादव, आप टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं। अमित राज झांसी उत्तर प्रदेश से हैं और सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो महादेव, आरती, संजीव, अमित और सत्य प्रकाश, आप सभी 5 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब शुक्रवार है और कुछ सूचनाएं मुझे आपको देनी है। पहली सूचना तो यह है फ्रेंड्स कि इस बीच में मेरे पास जो मेल स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, पहले भी आते थे, अभी उनकी संख्या कुछ बढ़ गई है। मैं देख रहा हूं कि वो कुछ ऐसे विषय पर जानकारी चाहते हैं जो ऑलरेडी मैं अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर में बता चुका होता हूं, लेकिन उन्होंने नहीं सुना होगा, तो स्वाभाविक है कि वो जानना चाहते हैं। और वैसे भी नए नए लिसनर हमेशा जुड़ते चले जाते हैं। और खासकर यहां मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि उन विषयों की लिस्ट बनाने के बाद अब हम लोगों ने ये फैसला किया है कि उनके ऊपर छोटे छोटे ही सही लेकिन YouTube पर लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएं। जैसे आप अपने सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी की शुरुआत कैसे करेंगे, स्टडी मटेरियल आपका क्या क्या होना चाहिए स्पेशली जनरल स्टडीज की दृष्टि से। तो ये जो डिफरेंट इश्यूज हैं जो बड़े कॉमन हैं लेकिन सामान्य से भी हैं, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग को मथते हैं कि हम कहां से शुरुआत करें, किन चीजों को पढ़ें। और मैं समझता हूं कि इस बारे में सचेत होना एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपकी शुरुआत अच्छी है, सिस्टमेटिक है, जो होनी चाहिए उस रूप में है, तो डेफिनेटली फिर सफलता पाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। और जब चीजें ऑलरेडी हैं तो उसके लिए हम क्यों रिसर्च करें, क्यों ढूंढें, उसमें क्यों वक्त खराब करें, अपनी क्यों एनर्जी लगाएं, बेहतर है किसी से पूछ लें। तो मित्रों, इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने YouTube पर कुछ प्रोग्राम्स डालने शुरू किए हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा। और मैं बताऊं उनको कि प्लीज वो मेरे नाम से या AFEIS के नाम से YouTube पर प्रोग्राम ढूंढें, उन्हें वो मिल जाएंगे। जैसे कि परसों ही हम लोगों ने एक YouTube पर छोटा सा प्रोग्राम डाला है, छोटे ही होते हैं, 10 से 15 मिनट के बीच के होते हैं, कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, क्योंकि टाइम को लेकर के स्टूडेंट्स की बहुत मांग होती है, हमारे पास समय नहीं है सर, क्या करें, कैसे करें। तो मैंने उसको लेकर के एक प्रोग्राम अभी आप सबको हमारी एकेडमी ने प्रोवाइड किया है और उसी का सेकेंड पार्ट हम कुछ समय बाद प्रोवाइड करेंगे। ये इस पर है कि आपको अपना टाइम टेबल बनाने के लिए किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि देखिए बनाना तो आपको खुद पड़ेगा, है ना। तो ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं, वहां आपको कुछ ऐसी बातें मिल जाएंगी कि आप फिर खुद अपने प्लानर बन सके। दोस्तों, अब जो दूसरी सूचनाएं हैं जो रूटीन की हर फ्राइडे की होती हैं कि कल, परसों और अब सोमवार को भी 3 दिनों तक डेली ऑडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा। परसों मैंने क्यों जो कल परसों के साथ ही साथ मैंने सोमवार भी क्यों जोड़ा है, आप जानते हैं कि सोमवार को 2 अक्टूबर है, बापू की जयंती है, उस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है और खासकर हमारे जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं उनके उन दिनों में डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, राइट। तो इस बार मित्रों 3 दिनों का बिछोह आप सबसे मेरा होगा, लेकिन आपको जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो मिलेंगी। साथ ही कल शनिवार को आपको योजना और कुरुक्षेत्र के टोटल 4 आर्टिकल, 2 हिंदी के और 2 इंग्लिश के मिलेंगे। वीकली क्वेश्चन मिलेगा, एक साप्ताहिक प्रश्न आपको मिलेगा और जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो मित्रों, ये कुछ सूचनाएं थी और यहां मैं आप लोगों की आज की शुरुआत थोड़ी सी एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से करना चाहूंगा मित्रों। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस बात की है कि हमारे अंकित वर्मा ने एक मेल भेजा है, जो हमारे 6th बैच के स्टूडेंट रहे अंकित वर्मा, जो फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने अभी अभी UPPCS का एग्जाम दिया है, प्री का एग्जाम दिया है। उन्होंने लिखा है कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि उनकी एज अभी काफी कम होगी। अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत पहले ही निर्णय लेकर के और अभी से उसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। मित्रों, हमारे सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट है, देखिए उन्होंने क्या लिखा है। लिपि रोमन है, भाषा हिंदी है। उसमें दिया है कि सर, मैंने यूपीएससी का अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें आपके डीएजी में बताए गए काफी क्वेश्चन आए थे। आपके द्वारा एसएजी मतलब स्पेशल ऑडियो गाइडेंस, एसएजी में बताए गए थे कि बताया गया था कि प्री का पेपर कैसे सॉल्व करें, उससे मुझे बहुत मदद मिली। थैंक्स सर। दोस्तों, मैं जानबूझ करके इस तरह के मेल कभी कभी ले लेता हूं। इससे पहले मैंने आपको एक मेल बताया था हर्षा गोहेल का, जिन्होंने गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस के बारे में अपने विचार दिए थे। और अभी हमारे सामने अंकित वर्मा हैं, जो यूपीपीएससी के प्री के बारे में अपने विचार दे रहे हैं। तो प्री से मेंस तक की तैयारी में डेली ऑडियो लेक्चर आपके लिए कितना उपयोगी है, इससे प्रूफ होता है। साथ ही साथ क्लासेस जो होती हैं उसके बारे में, तो अब आप जो क्लासेज अटेंड कर चुके हैं उन्हीं स्टूडेंट से पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा। और स्पेशल ऑडियो गाइडेंस तो मित्रों, मैं मान करके चलता हूं कि वो एक तरीके से प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए एक अमृत धारा की तरह है। और खासकर ये इस मायने में भी बहुत उपयोगी है कि जो स्टूडेंट यहां की क्लासेज अटेंड करके जाते हैं तो साल भर तक कम से कम उनका एक जीवंत जुड़ाव एकेडमी के साथ रहता है। क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि अगर हमने गमले में एक पौधा लगा दिया है तो साल भर तक तो कम से कम सप्ताह में एक बार उसमें एक लोटा पानी डाल दे ताकि वो जो पौधा है वो हरा भरा रह सके। तो इस दृष्टि को ध्यान में रख करके हम लोगों ने ये साल भर उनसे जुड़े रहने का एक तरीका निकाला है। और इससे खासकर वो मजबूत भी होते हैं, उनकी एक दृष्टि जो है वो भी विकसित होती है। तो मित्रों, इन सूचनाओं के बाद आइए अब मैं आता हूं सीधे सीधे न्यूज पर। मित्रों, एक अच्छी बात यह कि आज कोई न्यूज नहीं है। अब कह रहे होंगे कि सर ये बात क्यों कह रहे हैं कि एक अच्छी बात है कि क्यों कोई न्यूज नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब न्यूज नहीं है तो हम किसी एक टॉपिक पर ज्यादा विस्तार से बात कर सकते हैं। देखिए, एक टॉपिक पर तो आप आधे घंटे बात करा लीजिए, पूरी की पूरी क्लास लगवा लीजिए, एक डेढ़ घंटे की बात की जा सकती है। टॉपिक तो इतना बड़ा होता है, लेकिन समय की एक मर्यादा होती है, हम सबको उसका पालन करना होता है। तो मित्रों, आज हम अर्थचक्र पर बात करेंगे, आर्थिक व्यवस्था के चक्र पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं दो तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा जो मैं इससे पहले दिनों में समय की कमी के कारण नहीं रख पाया था। आपको ध्यान होगा फ्रेंड्स कि दो दिनों पहले मैंने आपको एक हिंदू का एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया था, वरिंग डाउन ग्रेट, अगर आपने उसे पढ़ा हो। उसमें जो स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड को अब इंडेंजर की सूची से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसने बाहर कर दिया है। इस तरह के क्वेश्चन पर्यावरण के संदर्भ में बहुत पूछे जाते हैं। आप सिविल सर्विस का प्री उठा करके देखिए तो इस तरह के बहुत आते हैं। मतलब अब तो पर्यावरण पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रतिशत लगभग 10-12 के करीब हो गया है। 10-12 प्रतिशत प्रश्न केवल पर्यावरण से पूछे जा रहे हैं। देखिए, उसका एक कारण यह भी है कि आपको मालूम है कि इसी से ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स जो आगे चल करके बनेंगे उनका भी प्री अब इसी में शामिल कर लिया गया है। तो अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो है तो उनको बटने चढ़ लेके पर्यावरण और बॉटनी की ज्यादा जानकारी होती है, तो शायद इसीलिए उसका कंपोनेंट उन्होंने बढ़ा दिया तो 10% के करीब है। लेकिन अच्छी बात यह कि ज्यादातर क्वेश्चंस का जो संबंध होता है वो करेंट कंटेंट से होता है, करेंट अफेयर्स से होता है। तो दोस्तों, मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपको इस तरह की खबर पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है, तो आपको चाहिए कि आप उसे थोड़ा सा विस्तार से देखें। यानी कि अखबार में एक लाइन पढ़ लिया और बात खत्म हो गई। जैसे अगर इसी को हम एलोबरेट करेंगे तो पहली बात तो यह है कि किसने इनको रेड लिस्ट में डाला। एक तो रेड लिस्ट क्या है, तो दोस्तों एक संगठन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है IUCN। इसका पुराना नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन अब उन एंड नेचुरल रिसोर्सेज को हटा दिया गया है, अब नाम हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और इसका उद्देश्य इसके नाम से बहुत साफ है कि जो पर्यावरण है कैसे उसकी रक्षा की जाए। 1948 में बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो स्विट्जरलैंड में है। तो मित्रों, स्नो लेपर्ड पहले रेड लिस्ट का मतलब होता है कि जिन स्पीसीज को या जिन प्रजातियों के नष्ट होने का खतरा है, जिनके अस्तित्व पर संकट आ गया है, उनकी वो लिस्ट बनाती है और फिर वो दुनिया भर के देशों को देती है कि भैया ये इनको बचाइए, अपने यहां आप प्रोग्राम बनाइए, पॉलिसी बनाइए ताकि इनकी रक्षा हो सके, राइट। तो उसमें से स्नो लेपर्ड को उन्होंने अभी निकाल दिया है, मतलब उनको लगता है कि जितनी संख्या इनकी होनी चाहिए थी उतनी संख्या इनकी अब हो चुकी है। तो इसका विरोध भी हो रहा है और उसके विरोध के रूप में ही जो एडिटोरियल कमेंट लिखा गया था हिंदू में वो मैंने आपको प्रोवाइड किया था। भारत में जो ये जो स्नो लेपर्ड हैं मित्रों, अब आप देखिए कि अब आपको एलोबरेट करना पड़ेगा, है ना, वो किन किन राज्यों में है थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। अब हिमालय क्षेत्र में आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि स्नो लेपर्ड है ना, स्नो मतलब बर्फ, ठंडे क्षेत्र का हुआ तो उसमें जम्मू कश्मीर आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी ये समझ लीजिए कि इस टॉपिक पर आपकी तैयारी हो जाती है। इसके बाद मित्रों, कल के अखबार में जो एक खबर थी कि जो हमारी जो केंद्र सरकार का जो आपके गृह मंत्रालय है, एक आपने देखा होगा कि रेलवे पुलिस होती है ना, जब आप रेलवे में सफर करते हैं तो पुलिस वाले होते हैं ना, वो बेसिकली रेलवे के पुलिस होते हैं, है ना। तो रेलवे पुलिस का जो डिपार्टमेंट पूरा विभाग है उसको पहले रेलवे ही मैनेज करती थी, उसे अब गृह मंत्रालय के अधीन लाने के लिए मामला चल रहा है और वो आ भी जाएगा नोट, क्योंकि बन चुका है और सरकार को केवल घोषणा ही करनी है निर्णय लेकर के। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो रेलवे पुलिस है वो अब गृह मंत्रालय के अधीन हो जाएगा, इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मित्रों, ये दो खबरें थी जो मुझे आपको बतानी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आता हूं मित्रों अर्थचक्र पर, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए भी कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं बच पाया है। देखिए, अर्थचक्र का मतलब क्या है कि जो अर्थव्यवस्था है वो एक साइकिल में काम करती है, एक चक्र की तरह राउंड में काम करती है, इसीलिए बहुत जटिल भी है। इसके बारे में मैंने आपको पहले कुछ बताया भी था। आपने ध्यान दिया होगा कि उसी समय मैंने ये बात आपके सामने रख दी थी कि अब अर्थव्यवस्था जो डाउनग्रेड हो रहा है, मतलब जो इसकी गति धीमी हो रही है, इसको लेकर के अब बहस शुरू होगी और आप देख रहे हैं कि कितनी जबरदस्त बहस देश में शुरू हो गई है। और कल वित्त मंत्री जी ने तो इस पर बहुत लंबा अपना एक उद्बोधन भी दिया है, उस राष्ट्र के नाम उद्बोधन नहीं था, वो एक प्रोग्राम में ही बोल रहे थे, लेकिन ऐसे अवसरों को तो आधार बनाया जाता है। अब आप देखिए कि कुछ बातें इस समय के न्यूज में आपको सुनने और पढ़ने को मिल रही है, है ना, मैं केवल उन बातों का उल्लेख कर रहा हूं। मित्र, मेरे पास अगर जितना भी वक्त होगा मैं उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और अगर मेरे से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा पूरी तरह से वक्त की कमी के कारण, तो प्लीज आप लोग इन्हें समझने की कोशिश कीजिए जो भी आपको इन्हें समझा सकता हो। जैसे एक न्यूज में ही आपने सुना कि सरकार ने यह कहा है कि वो लगभग 2,08,000 करोड़, तो 2,00,000 करोड़ कह लीजिए, 2,00,000 करोड़ रुपए पूंजी बाजार से उसे उधार लेने की योजना है, यानी कि पूंजी बाजार से, कैपिटल मार्केट से वो 2,00,000 करोड़ रुपए उधार लेने के बारे में सोच रही है। अब आपको जानना चाहिए कि ये पूंजी बाजार क्या होता है, राइट, और सरकार जो उधार लेने की सोच रही है तो इसका अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, क्योंकि इसी संदर्भ में यह बात कही गई है कि इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो गति धीमी हो गई है, देख रहे हैं ना, 5.7% पर आ गया है, बल्कि अभी जो यशवंत सिन्हा जी जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर भी रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि ये तो सरकार ने एक तरीके से आंकड़ों का जो विश्लेषण होता है उसका भी नई पद्धति कुछ महीने पहले, शायद एक साल हो गया, इसको कैलकुलेट करने की एक नई पद्धति वो लेकर के आए हैं, अदरवाइज तो ये 3.5 के करीब है जो बहुत ही कम है ना। तो इस संदर्भ में तो अब 2,00,000 करोड़ रुपए उधार लेने से किस तरह से अर्थव्यवस्था में गति आएगी, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए पूरे साइकिल के तहत। और ठीक इसी से जुड़ा हुआ एक दो खबरें और भी हैं। देखिए, पहला एक खबर आपने देखा होगा कि आज के अखबारों में भी है कि सरकार ने जो पब्लिक सेक्टर्स है, सार्वजनिक उपक्रम है, यहां तक कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों से भी कहा है कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा पैसा बाहर लगाइए, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कीजिए, मतलब इन्वेस्ट कीजिए, इसका अर्थव्यवस्था के विकास से क्या संबंध हो सकता है, इसके बारे में आप सोचिए। फिर वित्त मंत्री जी का कल जो व्याख्यान था, जो उस प्रोग्राम में जब गए थे, तो आपने देखा होगा कि दूरदर्शन पर उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे, है ना, लाइव टेलीकास्ट। उसमें उन्होंने एक बात कही जो बार बार ब्रेकिंग न्यूज के तहत वो आ भी रही थी, कि उनका कहना यह था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के लिए 4,00,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4,00,000 करोड़ रुपए, राइट। तो अब आपको यह भी जानना चाहिए कि इससे क्या हो जाएगा, कैसे अर्थव्यवस्था को गति मिल जाएगी, 4,00,000 करोड़ रुपए आपने रखे हैं। इसके साथ ही साथ एक और भी तथ्य है, उन्होंने कहा कि जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस के कलेक्शन में लगभग 15% की वृद्धि हुई है, 15% 15% की वृद्धि हुई है। तो अगर टैक्स में 15% की वृद्धि हुई है तो इसका अर्थव्यवस्था के विकास से या उसकी गति के तेज होने से उसका क्या संबंध हो सकता है? तो मित्रों, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको विचार करना है। यहां तक हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जो हमारा मतलब यहां तक कि जो हमने अब जो सिन्हा जी की बात कही, उनके पुत्र हैं जयंत सिन्हा जो इससे पहले राज्य वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके अभी जो भी सरकार ने कदम उठाए हैं इससे आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, जिसे आप आर्थिक अनुशासन कह सकते हैं, इकोनॉमिक डिसिप्लिन तैयार हो रहा है, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो औपचारिक हो रही है, जिसके परिणाम अच्छे परिणाम भविष्य में मिलेंगे। तो कैसे भविष्य में मिलेंगे, क्या होती है औपचारिक अर्थव्यवस्था, और सबसे बड़ी बात है कि इसके लाभ भविष्य में कैसे मिलेंगे, क्या हो जाएगा अगर औपचारिक अर्थव्यवस्था ये, तो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था क्या कौन सी है? तो इन सब पर आपको विचार करना है, और फिर ये देखना है कि सरकार ने जो दो अभी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, एक विमुद्रीकरण का और दूसरा जीएसटी का, लोग इन्हीं को दोषी ठहरा रहे हैं कि इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था अब गड्ढे में जा रही है। ठीक है, तो आपको मालूम तो होना चाहिए कि भाई क्या इसके कारण सच में जा रही है, और जा रही है तो कैसे जा रही है, मतलब रीजन पर जाइए। अर्थव्यवस्था सीधे सीधे हमें जो तैयारी करनी है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसके व्यवहारिक पक्ष पर हमें ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, ये कुछ आज के मुख्य विषय के बारे में पॉइंट्स मैंने दिए हैं जो आप लोगों को अपने ढंग से विचार करना है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। तो अब न्यूज़पेपर्स की जहां तक क्लिपिंग का सवाल है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मित्रों, वो सब आप अपने अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, अमित कुमार सिंघल हरियाणा से, जया वर्मा, शैली अग्रवाल, विकास गुरुग्राम हरियाणा से, मोहित कुमार चुरू राजस्थान से, कुंदन निराला खगड़िया बिहार से, शुभम वर्मा मेरठ उत्तर प्रदेश से, चमकौर सिंह मोगा पंजाब से, और स्वदीप पाठक, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, कल दशहरे का दिन है और सोमवार को हमारे बापू की जयंती है, तो दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से, और मेरी ओर से, कि यह दशहरे का पर्व एक प्रकार से हम सबके लिए शक्तिपात का कारण बने, हम सबको मां शक्ति दे, ये हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ बापू की जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं समाप्त करने की आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।